नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और अपने डिजिटल भविष्य को सशक्त बनाने तथा वैश्विक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4,594 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से 4 नई सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंडल द्वारा लिया गया।
4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, 2 ओडिशा में, 1 पंजाब में और 1 आंध्रा। 2022 में जब सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी नेतृत्व है जिसके तहत उन्होंने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तहत काम चालू किया और कंप्लीट इकोसिस्टम पे ध्यान देने का प्रधानमंत्री जी का हमेशा मार्गदर्शन रहा। तो अब कंप्लीट इकोसिस्टम डिजाइन, वेफर फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स, असेंबली, टेस्टिंग, फाइनल प्रोडक्शन, हर चीज पे, इलेक्ट्रॉनिक्स के हर सेक्टर पे, हर डायमेंशन पे काम चल रहा है।
श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले में 6 वर्षों के भीतर बनने वाली 700 मेगावाट क्षमता वाली टाटो 2 जल विद्युत परियोजना को भी मंजूरी दी।
टाटो 2 प्रोजेक्ट शियोमी जिले में है, 700 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है और 2.7 बिलियन यूनिट्स एनर्जी ये जनरेट करेगा। 8,146 करोड़ इसका इन्वेस्टमेंट रहेगा, 6 साल में कंप्लीट करेंगे और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिकल पावर कॉर्पोरेशन इसको एग्जीक्यूट करेगा। ओवरऑल पूरे रीजन में स्वागत किया जा रहा है क्योंकि इससे स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, क्लीन एनर्जी मिलेगी और साथ ही साथ राज्य सरकार को काफी अच्छा रेवेन्यू मिलेगा।
देशभर के किसानों ने विदेशी दबाव के बावजूद व्यापार समझौते के सिलसिले में साहसिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। किसान संगठनों के नेता और किसानों के एक बड़े समूह ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। उन्होंने किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार के निर्णायक कदम के प्रति आभार और समर्थन व्यक्त किया। बातचीत के दौरान श्री चौहान ने कहा कि सरकार जल्द ही नकली उर्वरक और रसायनों का उत्पादन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए नया कानून लाएगी। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक का तीसरा दौर आज नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, निर्मला सीतारामन, अश्विनी वैष्णव और पीयूष गोयल इस सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री गान किम योंग और विदेश मंत्री जोसेफिन तियो सहित वहां के कई मंत्री इस बैठक में भाग लेंगे। ये मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक भारत सिंगापुर के बीच सहयोग का नया एजेंडा निर्धारित करने का एक अनूठा तंत्र है। ये भी कहा गया है कि भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी है और मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन के तीसरे दौर में द्विपक्षीय आपसी संबंधों को और व्यापक तथा गहरा बनाने के अवसरों की पहचान की जाएगी। चुनाव आयोग ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त डॉ सुखबीर सिंह संधू तथा डॉ विवेक जोशी ने राकांपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रतिनिधि ब्रिजमोहन श्रीवास्तव के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता की। ये बैठक चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के अध्यक्षों के साथ की जा रही बातचीत का एक हिस्सा है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत राजधानी गंगटोक के बहुउद्देशीय सांस्कृतिक स्थल मनन केंद्र में कल आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का नेतृत्व किया। श्री तमांग ने हर घर तिरंगा अभियान के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और सभी प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारत की आजादी का अमृत महोत्सव और सिक्किम के स्वर्ण जयंती समारोह का एक हिस्सा है। भारत की नम्रता बत्रा ने चीन के चेंगदू में 2025 के विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा के फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ये विश्व खेलों में वुशु में भारत का पहला पदक है। भारत ने विश्व खेलों में अब तक कुल 7 पदक जीते हैं जिनमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 पदक कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।